نحمده نصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل الفاظ کی وضاحت اور ان کے مادہ جات سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31 جاءت اس کا روٹ ہے جیم حمزہ یا اور جاء آئے جاءت یہ جو تا ہے نا اس کو تائے طویلہ کہتے ہیں طویلہ طویل سے لمبی بڑی تا طویل تا اور یہ جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے یہ ورب مؤنث ہے کیوں آگے جو ہے وہ رسول آیا ہے اور رسول واحد ہے رسول اس کی جمع ہے اور عربی زبان میں یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بھیجے ہوئے پیغام لے کر آنے والا اور اس کا روٹ ہے را سین لام اور اس کے معنی ہیں آرام سے ہواؤں کا چلنا را سین لام اس کے لفظی معنی ہے آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا پھر ناکتن رسلتن نرم رفتار اونٹنی کو بھی کہتے ہیں اسی طرح ہواؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو نرمی سے اور آہستہ سے چلتی ہیں تو اصل معنی ہے را سین لام کے آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلنا تو رسول جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ آہستہ نرمی سے چلتے رہتے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر اور پھیلاتے رہتے ہیں بالبشرا آیت نمبر 31 ہی میں لفظ ہے بالبشرا آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں خوش ہونا خوش کرنا خوش لگنا قرآن میں اس کے لیے 10 لفظ آئے ہیں اور اسی میں سے ایک جو ہے یہ بشرا ہے اور اس کا مادہ ہے باشین را اس کے لفظی معنی ہے کھال چھیلنا کھال کے اوپر کے رخ کو بھی بشرتن کہتے ہیں اور اسی طرح جیسے استبشرا کے معنی ہوتے ہیں ایسی خوشی جس کے آثار جلد یا چہرے پر نمایاں ہوں اسی طرح پھر بشرا ہے بشرا کے معنی بھی ہیں کہ اچھی خبر سن کر یا اچھی چیز کے ملنے پر خوشی ہونا جیسے یوں بھی کہتے ہیں بادشاہ اچھی خبر دینا جس سے دوسرا خوش ہو جائے تو بالبشرا ظالمین آیت نمبر 31 کے آخر میں آیا ہے ظالم واحد ہے ظالمین جمع ہے جمع دو طرح سے بھی آتی ہے نا کبھی ظالمون ہوتا ہے کبھی ظالمین ہوتا ہے دونوں طرح ٹھیک ہے یہ عربی حالت کا فرق ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ گرامر کی کلاس میں مزید آپ پڑھیں گی اس کی تفصیل آیت نمبر 32 سورۃ العنکبوت اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نحنو نظر آ رہا ہے نحنو ہم کے لیے آتا ہے یہ الگ ہو کر جب آتا ہے نا تو نحنو آتا ہے اور کبھی جو ہے جب یہ ملا کر آتا ہے تو پھر اینڈ پر اس کے نون آ جاتا ہے نون الف نا ایسے بھی ہوتا ہے اس کی مثال بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ چونکہ یہ زیادہ رسول تھے مطلب یہ جو رسول کا لفظ قرآن میں پیغمبروں کے لیے بھی آتا ہے فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ دونوں ہی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ تھے جو آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو اس لیے قالو آیا ہے جمع کا صیغہ قالا نہیں آیا قالو آیا ہے اس لیے نحنو آیا ہے ٹھیک ہے ہم کا صیغہ آیا ہے پھر اسی طرح عالمو عالم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے سپرلیٹیو ڈگری اور اس میں جو ہے وہ ज्यादा इल्म रखना, जैसे किसी के साथ कंपैरिजन होता है कि उसकी निस्बत ज्यादा इल्म रखना। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि आप फलां बस्ती पर जो अजाब लेके जा रहे हैं वहां तो लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं, तो इल्म था ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन फरिश्ते कहते हैं कि नहनु आलमु, हम ज्यादा जानते हैं, यानी तुम्हें पता है कि वहां पे वो हैं तो हमें उससे ज्यादा पता है। बहरहाल लनुनज्जियन्नहु, इसका रूट है नून जीम वो, निजात पाना, खलासी पाना, लाम लामे ताकीद है और नून पर जो शद आया है यहां पे आप देखेंगी तो ये जो हा से पहले नून है ना, नून पर शद नजर आ रही है तो ये भी ताकीद के लिए आता है। इमराता, इमरातुन जो है ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है, और मर्रा होता है गुजरना, और मर उन गुजरने वाला आदमी, और फिर उसी तरह इमरातुन जो गुजर कर जा रही है, तो ये जो ता होती है ये मुन्नस की अलामत होती है। इमरातुन गाबिरीन, कानत मिनल गाबिरीन, क्योंकि औरत मुन्नस है ना, काना नहीं आया, कानत आया है, गौर किया करें आप लोग। अब तो माशाल्लाह आपको काफ़ी समझ आ गई है ग्रामर की, क्योंकि काफ़ी अहम बातें बीच बीच में आप पढ़ते रहे हैं। तो काना मुजक्कर के लिए आता है, मुजक्कर वाहिद के लिए, कानत मुअन्नस के लिए आता है और वाहिद के लिए, कानत मिनल गाबिरीन। गैन बारा गबरा, इसके मानी होते हैं जैसे गुबार, गर्दो गुबार, जैसे कोई गुजर कर जाता है ना तो पीछे जो उड़ रही होती है मट्टी, तो पीछे रह जाती है ना वो मट्टी, तो गर्दो गुबार। तो ये गबरा लफ्ज़ पीछे रह जाने वालों के लिए भी आता है। गाड़ी आपने देखी हो, बस गाड़ी, और यहाँ पे तो इतना आपको इत्तफाक नहीं होता, आप अपने पुराने इलाकों में अगर देखें पाकिस्तान में, इंडिया में बसें जाती हैं गुजर कर, वैगन्स, तो उसके बाद जो है वो, तो उसके बाद क्या होता है कि जब गाड़ी और बस गुजर कर जाती है तो पीछे बहुत देर तक मट्टी होती है जो ऊपर उड़ रही होती है, गर्दो गुबार। तो लफ्ज़ी मानी है पीछे रह जाना, तो गर्दो गुबार भी पीछे रह जाती है, तो इसलिए तो अल गाबिर वाहिद है, गाबिरीन जमा है उसकी, तो पीछे रह जाने वाले बहुत से थे, उनमें से लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी, क्योंकि और पीछे कौन रहे थे, वो सारे जो काफिर थे। फिर आयत नंबर 33 है, वल्लम्मा अनजात रसूलुना, अब फिर वही फरिश्तों का जिक्र है, यहाँ पे रसूल वाहिद है, रसूल जमा है, फरिश्तों के लिए आया है कि अब वो लूत अलैहिस्सलाम के पास जो है वो पहुंचे हैं। यहाँ पे सी आ बहिम जो है ये अहम लफ्ज़ है, सी आ, इसका रूट है सीन वो हमजा, सू बुराई के लिए आता है। वैसे आप आमतौर पे भी किसी चीज में जब तकलीफ होती है तो आप सी करती हैं ना, बहरहाल सीन वो हमजा सू बुराई के लिए आता है, और बहिम इनके साथ, तो बुरा महसूस हुआ इनके साथ। मुराद क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों को देखा तो फरिश्ते चूंकि लड़कों की शक्ल में थे, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में, उन्हें नहीं पता था ये फरिश्ते हैं, तो वो बड़े परेशान हुए, वो बहुत ही उन्हें बुरा लगा, ना खुश हुए कि खूबसूरत लड़के मेरे घर आ गए और मेरी कौम का इखलाक इतना बुरा है तो मैं इनकी हिफाजत कैसे करूँगा। तो यहाँ पे सी आ बिहिम, हिम की ज़मीर जो है ये फरिश्तों के लिए आई है, क्योंकि वो ज़्यादा थे ना, अगर एक फरिश्ता होता तो हु आता, तो हिम आया है। और वदाका बहिम ज़रअन, दाका जो है इसका रूट होता है द्वाद या कौफ, दीक, ये तंगी के लिए इस्तेमाल होता है, दीक तंग होना, और ज़रअन दाल रा आयन, ये बाजू को कहते हैं, हाथ को कहते हैं, और कोनी से लेकर दरमियानी उंगली के आखिर तक का हिस्सा, आप मेरी तरफ देखें, यहां से इस कोनी से लेकर यहां से, यहां से, यहां से, आप ये देखें मिडल वाली जो उंगली है शहादत की उंगली के साथ, और यानी दोनों तरफ आप दो दो उंगलियां छोड़ें और दरमियानी उंगली के एंड तक देखें, तो इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और वैसे कहते हैं बाजू को, हाथ को, याद रखें ये जो है ना दाका बहिम ज़रअन, ये किनाया है आजजी से। हाथ आमतौर पे, हाथ क्या होता है, हाथ ये देखें बाजू और हाथ कुव्वत की अलामत होता है, कुव्वत की, लेकिन चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो कमजोर थे। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि वो आजिज हो गए, उन्हें अपना जो हाथ था या बाजू था वो तंग महसूस हुआ। वद्दाका बिहिम ज़रअन मानी है, और तंग हुआ इनके साथ उनका सीना, उनका दिल, उनका बाजू। तो बाजू के साथ ही सीना होता है ना, तो यानी उसका तंग होना, दिल का तंग होना, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अरबी जबान में दाकत यदा, हाथ का तंग होना, उसका मतलब होता है कोई बखील हो। तो इसी तरह बाजू का तंग होना, दिल का तंग होना, इसका मतलब है कि सख्त परेशान। चूंकि फरिश्ते जो थे वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बात पर सख्त परेशान थे कि अपनी बदकार कौम से मैं इन्हें कैसे बचाऊं, तो दिल ही दिल में वो परेशान हो रहे थे। तो ये एक दरअसल मुहावरा है, वदाका बेहिम जरअन, और तंग हुआ इनके साथ सीना, दिल, बाजू। वकालू ला तखफ वला तहजन, तखफ जो है खा व फा खौफ, खौफ किसका होता है? मुस्तकबिल का होता है, कि अब तुम हमारे बारे में खौफ मत करो कि ये कौम हमारे साथ क्या सलूक करेगी, आने वाले वक्त का तुम खौफ ना कर। वला तहजन हाजानून, जो माजी में हो चुका उसका अब गम ना कर। अब ये आप गौर करें, बड़ा खूबसूरत अंदाज है कुरान का, मुनज्जू का, नून जीम वो इसका रूट है, और इसके मानी है निजात पाना, खलासी पाना। वह आहला का इल्लम राता का कानत मिनल गाबिरीन, अब इसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। चले आगे, चले अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे आयत नंबर है 34। इसमें जो है अगर आप देखें तो हाजे ही आया है। हाजे ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोनस के लिए होता है, और कहते किसे हैं? इसम इशारा, इसम इशारा। और अगर कोई चीज जो है वो मुजक्कर होती तो फिर हाजे ही की बजाय क्या आता? हाजा आता। और इससे पता चल रहा है कि हाजे ही के बाद वाला लफ्ज जो है ये मोनस है, और लफ्ज क्या है? करिया। करिया जो है ये हर उस जगह को कहते हैं जहां लोग जमा होकर आबाद हो जाएं, छोटी बस्ती भी हो सकती है, गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, और फिर इसके लिए इसकी जमा इस्तेमाल होती है कुरा, और उम्मुल कुरा किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं। शाबाश, के बस्तियों का मरकज, मरकजी शहर इसे जो है वो कहा जाता है। तो ये है इसका करिया का। करिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, और वैसे हम आम तौर पे कहते हैं कि गांव कहते हैं, क्योंकि शहर की निस्बत करिया जो है वो छोटा होता है ना, बस्ती छोटी होती है, गांव की तरह का इसका अंदाज होता है। इसका रूट है काफ, रा और या। शाबाश, आगे लफ्ज है रिजन। रिजन जो है यही इसका रूट है, रा जीम जा, रा जीम जा, और इसके मानी है रा जीम और जा के। ये लफ्ज इस्तेमाल होता है गंदगी के लिए, गंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, और अजाब के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे गंदगी के लिए रिज्स भी आता है ना, रा जीम सीन, और ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल होता है गंदगी के लिए, और आप देखें कि जो गंदगी है वो क्या होती है, गंदगी भी तो दरअसल एक तरह का, अगर आप गौर करें तो वो अजाब ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो अजाब की शिद्दत के लिए और अजाब को जाहिर करने के लिए गंदगी का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है। और इसमें रिज्स में और रिज्स में आमतौर पे बहुत मामूली फ़र्क किया जाता है, और बाज़ वक़्त कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के हम मानी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंदगी को देखकर इंसान पर एक कप कपाहट सी तारी हो जाती है, और इसी तरह अजाब जो है वो भी सबको हिला के रख देता है। तो रिज्स है, और फिर उसके साथ ही रिज्स है, रिज्स और रिज्स। वैसे गंदगी के लिए एक लफ्ज़ है तफासा का, तफासा, या आप इंशाल्लाह आगे सूरत हज, हज पढ़ चुकी हैं आप? आप सूरत हज में, वैसे सूरत हज जो है वो पहले आ जाती है, तो सूरत हज में भी ये लफ्ज़ आपने पढ़ा है। तफासा जो है इसके मानी होते हैं किसी चीज़ पर मैल कुचैल का चढ़ जाना, और रिज्स का मतलब होता है बेचैनी, इस्तराब पैदा करना, रिज़िया शायरी, शैतानी जो वसवसे होते हैं ना वो भी दिल में बुरी ख्वाहिशात पैदा करते हैं, उसको भी रिज्स कहते हैं, शैतानी ख्यालात को, शैतानी वसवास को। और राजीम सीन ऐसी गंदगी को कहते हैं जिसे शरीयत ने नापाक कहा है, मादी मानवी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो रिज्स है इस्तराब, बेचैनी पैदा करने वाली शैतानी वसवास, और राजिम सीन हराम और गंदी चीजों की नजासत। यफ सुकून, यफ सुकून, यफ सुकून आपके पास भी मौजूद है, आयत नंबर 34 में ये लफ्ज है, और इसका रूट है फा सीन काफ। इसके लफ्जी मानी आते हैं आपको क्या है? लफ्जी मानी इसके फटने के होते हैं। फा सीन काफ इसके लफ्जी मानी होते हैं फटना, और जब कोई चीज फटती है तो उससे कुछ बाहर निकलता है ना, है ना? तो जो नाफरमान होता है वो क्या करता है, फासिक क्या करता है, अल्लाह की हुदूद को फाड़ कर बाहर निकलता है। फाजिर, जैसे फाजिर का लफ्ज भी आता है, लेकिन फसाका, फसाका जो है ये खास है, और जैसे फट कर बाहर निकलना, तो फासिक जो है वो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकलता है। आप इसको याद कर लें, गदरी खजूर का अपने छिलके से बाहर आना, खजूर जब पक रही होती है ना फट कर अपने छिलके से बाहर आ जाती है। तो फिर लफ्जी मानी क्या है, फट कर बाहर आना। तो इसी तरह फासिक जो है वो अल्लाह के अहकामात के दायरा जो है ना उसको तोड़कर फाड़ कर जो है वो बाहर निकलता है। तो इससे इस आप शिद्दत का अंदाजा कर सकती हैं कि इसके मानी क्या है। और कुरान में ये लफ्ज बड़ी कसरत से जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो खजूर का फट कर अपने छिलके से बाहर आ जाना, फसा कर रतब, रतब खजूर के लिए ही आता है ना। फिर आप देखिए आयत नंबर 34 के बाद 35 है, 35 कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। आयत 36 है, इसमें जो है इसमें भी कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। अखाहुम का रूट आप बता दीजिए जी। हमजा खा वो, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया है, वेरी गुड। और इसके बाद यहां पे आयत नंबर 37 में मुश्किल लफ्ज है, और यहां पे है अगर आप देखें तो एक तो है अर रजफातु, रजफातु इसका रूट है रा जीम फा, और इसके मानी होते हैं कांपना के, कांपना अजाब को कहते हैं, और जलजले के लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जलजला क्या करता है, उसके अंदर एक कपकपाहट पैदा होती है, हिलाता है ना वो, और इसी तरह आम अगर कोई कांप रहा है तो भी, और अजाब जो है ये दरअसल अजाब की एक किस्म है, रजफा अजाब की एक किस्म है। और अल्लाह का जो अजाब है वो क्या करता है, एक हर तरफ जो है वो कपकपाहट और एक रजफा की कैफियत पैदा कर, फाखजत हुमुर रजफतु, के इनको जो है वो रजफा ने आकर जो है वो पकड़ लिया, और मुराद है सख्त जलजला, सख्त जलजला जिसमें कपकपाहट भी थी और उसके साथ जो है वो पत्थरों की बारिश भी थी। अजाब के लिए यूं तो कुरान में बहुत से अल्फाज आए हैं, लेकिन खास तौर पे रजफा जो है इसे हम देख लेते हैं। वही बात, जमीन में जलजला आना, रजा फतेल अर्द, कांपने लगना, समंदर की मौजों के अंदर जो है कपकपाहट का होना, बहरुन रजाफुन, मुतलादिम समंदर, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं तो क्या है, एक जलजला है। जलजला आमतौर पर जब आता है क्या होता है कि ऊपर नीचे कर देता है ना, रजफा। यहां पे दारहिम, दारहिम भी अहम है, इसका रूट क्या है दारहिम का? दाल वोरा, शाबाश, इसका रूट है दाल वोरा। और दार, दार जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है घर के लिए। घर के लिए आपने और लफ्ज भी पढ़ा है, वो क्या है? बैत, शाबाश। बैत के माने क्या होते हैं? ऐसा घर जिसमें आप रात गुजारते हैं, शाबाश, ऐसा घर जिसमें आप रात गुजारते हैं। और एक है बैत, दूसरा है मस्कन। मस्कन आप देखें, ये आयत नंबर 38 में पढ़ेंगी, मसाकिनहिम, मस्कन वाहिद है, मसाकिन उसकी जमा है। जो मस्कन होता है ना, सिर्फ रिहायश के मानी देता है, खा उसमें रात ठहरने की जगह ना हो, हो भी सकती है ना भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। मस्कन, आबाद होना, काम काज करने के बाद आराम करना, वो जगह जहां इंसान रिहायश इख्तियार करे, तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। ये इसका दूसरा दर्जा है। तीसरा है दार, दाल वो रा इसका रूट है, दियार इसकी जमा है। और दार के इस्तेमाल में बहुत वुसत, घर, हवेली, बस्ती, शहर, मुल्क, बल्कि तमाम दुनिया, बल्कि आखिरत पर भी इसका इस्तेमाल होता है, इतनी इसके अंदर वुसत है। तो आप यूं समझ लें कि अंग्रेजी में हाउस एक होता है, होम, और एक होता है हाउस, दोनों में क्या फर्क होता है इंग्लिश में जब आप हाउस बोलते हैं और होम बोलते हैं? हाउस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में जब उससे बैत, घर की दाखली हैसियत मुराद ली जाती है, यानी अंदर का हिस्सा, जैसे बैत है ना, तो उसके लिए हाउस कहा जाता है। और जब होम कहते हैं तो जैसे दार कहते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है वो हवेली है, वो है दार, ठीक है, हवेली है बहुत बड़ी और वो दार है, जैसे हमारी गांव में हवेली थी तो उसका बहुत मजबूत बड़ा सा गेट लगा होता है। घरों में आपने देखी होंगी, अगर गांव में आपने हवेली सिस्टम देखा होगा तो। अच्छा, आप अंदर आते हैं ना, तो अंदर हमारा अपना अलग घर था, उसी हवेली के अंदर मेरे चचा का अलग घर था, उसी में मेरे दादा दादी का जो था वो अलग घर था। तो जैसे एक बुजुर्ग हैं और उनके बच्चों के अलग अलग अंदर घर जो हैं वो बने हुए हैं। तो आप इसको यूं कह सकती हैं कि एक है दार, दार है वो हवेली, और अंदर जो बने हुए हैं सारे वो है बैत, बैत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह आपको जो है वो समझ आ जाएगी। और यहां पे जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फअस बहू फी दार हिम जासिमीन, के बस वो हो गए अपने घरों में जासिमीन, के हवेली में भी और फिर उसके अंदर जो बैत थे वो सारे के सारे वो तबाह बर्बाद हो गए। और असबाहू आपको पता ही है कि हालत की तब्दीली के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जासिम किसे कहते हैं? जा सा मीम इसका रूट है, और जासिम वाहिद है, जासिमीन जमा है, और इसके मानी होते हैं जा सा मीम के, परिंदे का सीने के बल जमीन पर बैठना और फिर इससे चिमट जाना। परिंदे का सीने के बल जमीन पर बैठना और फिर इससे चिमट जाना। तो जासिमीन कहते हैं औंधे मुंह गिरावा होना, किसी का औंधे मुंह गिरावा होना, जा सा मीम। और ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है वो उस कौम पर जो अजाब भेजा तो उसकी शिद्दत का इजहार करने के लिए है, कि जैसे परिंदा जो था सीने के बल जमीन पर बैठा था, फिर समीने से सीने के साथ ही वहीं चिमट कर रह गया, उठ ही नहीं सका, वहीं जो है वो ढह गया, जैसे वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। बैठे हुए इंसान को कहते हैं, बहुत सोने वाले सुस्त इंसान के लिए भी जासिम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे होता क्या है, जब आप जाग रहे होते हैं ना, आप देख रहे हैं कि आंधी है, तूफान है, या कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप अपने तहफ्फुज के लिए हाथ पांव मारते हैं। अगर कोई सुस्त है, सो रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं चला कि उस पर क्या मुसीबत आई, क्या अजाब आया। तो यहां पे भी है कि वो जब अपने घरों में मौजूद थे, जहां पे ये पूरी कौम थी, तो वो अपने घरों के अंदर, अपनी हवेलियों के अंदर ऊंधे पड़े के पड़े रह गए। ऐसे वक्त में उन पर अजाब आया कि बस उन्हें होश ही नहीं रहा। और वैसे आप कैसे इसको याद रखेंगी कि जैसे परिंदा जो है वो सीने के बल जमीन पर जब बैठ जाता है उससे चिमट जाता है, इसी तरह किनायतन किसी शख्स का सीने के बल जमीन पर लेट जाना, तो जमीन पर ओंधे के ओंधे रह गए, लेटे के लेटे रह गए। आयत नंबर 38 है, 38 मसाकिना पहले ही पढ़ चुकी हैं, और इसमें जयना लफ्ज है, ये भी आपको आता है, यही इसका रूट है ना, क्या रूट है इसका, जायानून, और ब्यूटीफाई करना, बातनी और जाहिरी आराइश दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और हम आते हैं आयत नंबर 38 में, और यहाँ पे लफ्ज है, एक है फसद्दा हूं, ये मैं बहुत दफा पहले भी बता चुकी हूँ, इसका रूट क्या है, ऊंचा बोले, शाबाश, स्वाद दाल दाल, और इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, क्या, शाबाश, लाजिम और मुतद्दी। ग्रामर में इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको ये तो पता ना लाजिम और मुतद्दी क्या है, हाँ, खुद भी रुकन, एक वक्त में एक बंदा बोलेगा कि एक खुद रुकना और दूसरों को रोकना। बाज ऐसे फेल होते हैं जिसका असर जो है सिर्फ फाइल तक होता है, और बाज ऐसे होते हैं कि जिसका असर फाइल से गुजर कर मफूल तक पहुंचता है। तो ये ऐसा वर्ब है कि जिसमें जो है वो रोकने वाले का असर दूसरे को भी पहुंच रहा है ना, तो इसको इसलिए लाजिम और मुतद्दी कहते हैं। फसद्दहुम अनिस सबीली, सबील का रूट क्या है, और किस रास्ते को कहते हैं, शाबाश, खुला और कुशादा रास्ता। मुस्तबसिरीन, मुस्तबसिरीन जो है ये वैसे तो इसका रूट क्या है, बास्वादरा, और बसर किसे कहते हैं, आंख के लिए इस्तेमाल होता है, आंख की बिनाई के लिए भी आता है। आंख तो, आयन तो सबके पास होती है, लेकिन बसीरत सबके पास नहीं होती। तो मुस्तबसिरीन जो है ये ऐसा बाब है, जैसे एक चीज होती है जैसे डाई होती है ना, जैसे आप केक बनाती हैं, पता नहीं आप बनाती हैं मेरा ख्याल, तो कुकीज और चीजें, आप देखिए आपके पास कुकीज बनाने के डिफरेंट सांचे हैं, डिफरेंट सांचे हैं ना। अच्छा, अब आप उसमें वो अपना मटेरियल डालते हैं, किसी में हार्ट शेप की बनती है, किसी में गोल शेप की वो कुकी बन जाती है, या केक बनाती हैं तो कप केक बनाती हैं, या फिर आप राउंड शेप होता है, डिफरेंट तरह का होता है, अंदर से सुराख वाला भी होता है। तो बहरहाल, तो ये जो मादा होता है ना, ये रॉ शेप होती है, मादा आपने लिया, फिर उसमें और चीजें डालती हैं, अल्फाज हरूफ और डलते जाते हैं। तो इसकी भी ना कुछ सांचे हैं, वो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगी, कुछ सलासी सांचे हैं, कुछ रुबाई सांचे हैं, तो कोई बाबे फाल में चीज चला जाता है लफ्ज, कोई बाबे तफील में चला जाता है, कोई बाबे इस्तफाल में चला जाता है, तो उससे मानी में फर्क पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी मुस्तबसिरीन जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी होते हैं मुस्तबसिरीन के, इसके मानी बसीरत के भी हैं और मुबसिर के भी हैं, बसीरत के भी हैं और मुबसिर के भी हैं। बसीरत का मानी क्या होता है, जैसे किसी का बड़ा अक्लमंद और होशियार होना और बात को समझ आना, ये माने भी हैं, और मुबसिर के माने क्या होते हैं कि बड़े होशियार थे। एक तो है ना कि होशियार थे और वाकई उनके अंदर बसीरत और होशियारी जो थी वो पाई जाती थी। तो बहरहाल ये आयत नंबर 38 है, 38 इसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी है खूब अकल रखने वाले, खूब अकलमंद लोग, मुस्तबसिरीन, वो बड़े जीरक थे, होशियार थे, माहिर थे, चलाक थे, दुनियादारी के लिहाज से बड़ी चलाक कौम थी। चलाक थे भी और उनके अंदर चलाकी पाई जाती थी। तो वही वाली बात के बसीरत भी रखते थे और मुबस्सिर भी थे, दुनियादारी के लिहाज से मुस्तबसिरीन। आयत नंबर 39 है और इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फस्तकबरू का बारा। इसके क्या मानी है? बड़ाई। और वो और डेफिनेशन क्या है? बतरुल हक्की व गमतुन्नास। गमतुन्नास, ये हमें हदीस से इसकी तारीफ पता चलती है। तो अलिफ सीन ता जो है इससे तलब के मानी पैदा हो जाते हैं ना, कि बड़ाई को मांगना। अल अर्द जो है ये इस्म जिन्स है, वह जमा मुजक्कर मुअन्नस इस्तेमाल होता है। वैसे इसकी जमा अर्दीन भी आती है। साबिकीन, ये सीन वाकाफ से है, आप आगे सबक लेती हैं, आगे बढ़ती हैं। साबिक, सबकत ले जाना, साबिकू। और इसी तरह साबिक, ये इसम फाइल जमा मुजक्कर का सीगा है। फिर है आयत नंबर 40। 40 और इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जम्बेही का, बेजम्बेही। जम्बेही जो है जाल नून बा, इसका रूट है जम्बुन, और ये कहते हैं गुनाह को। अच्छा, ये लफ्ज गुनाह के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? पहले भी वैसे आपने इसको पढ़ा है कि हर उस काम को कहते हैं जिसका अंजाम बुरा हो। ये लफ्ज जो है छोटे 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 गुनाह हो या बड़े बड़े गुनाह हो, सबके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, छोटे गुनाहों के लिए भी और बड़े गुनाहों के लिए भी। जम्बुन। अच्छा, गुनाह करने वाला गुनाह कैसे करता है? वो ऐसे ही है जैसे कोई डोल भर भर कर जो है वो डालता चला जाता है ना? तो डोल भर भर कर जब आप डालते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप जैसे पानी लेते हैं क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा डोल जो है वो डालते चले जाते हैं। इसी तरह ये लफ्ज जो है ये डोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अरबी जबान में पानी निकालने का जो बर्तन है उसको जम्बुन कहते हैं, जैसे डोल या बाल्टी, जबकि वो पानी से भरा हुआ हो। अरबी जबान में पानी निकालने का बर्तन डोल या बाल्टी, जबकि वो पानी से भरा हुआ हो। तो इखलाकी लिहाज से क्या था कि उनका जर्फ भरा हुआ था, उनके गुनाहों का जो बर्तन था ना वो भरा हुआ था, लबरेज हो चुका था। तो इस तरह ये लफ्ज जो है फिर ज़म्बुन, ज़ुनूब, गुनाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ आई? जैसे पानी का बर्तन आप कुएं से निकाल रहे हैं, कुआं देखा है आप लोगों ने, तो आप अपने पास उसको डालते जा रहे हैं, इसी तरह आप डोल से पानी लेकर अपने बर्तन में डाल रहे हैं। तो इसी तरह किसी कौम का इखलाकी पैमाना दरअसल एक जस्ट लाइक अ पॉट है, बर्तन है। तो कौम गुनाह कर करके उसका वो बर्तन भर जाता है। तो इस तरह ये लफ्ज फिर गुनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे है हासिबा, आयत नंबर 40 में। हा स्वाद बा इसका रूट है और ऐसी तुंदो तेज हवा को कहते हैं जो जिसके अंदर पत्थर भी हों, किंकर भी हों, और वो हवा उन पत्थरों को लेके उड़ा रही हो, उसको कहा जाता है। फिर है असहतु। सहतु जो है ये आप पहले पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है? स्वाद या हा, मानी क्या है? चीख तो है, लेकिन मैंने इसके भी आपको एक असल मानी बताए थे। ये कहते हैं जब लकड़ी जो है फाड़ी जाती है ना, तो लकड़ी को फाड़ते वक्त जो एक आवाज पैदा होती है उसके लिए ये। आप देखें, आपने कभी जो है वो लकड़ियों को फाड़ा हो या फाड़ते हुए आप पास हो और आप देखें کہ ایک چنگاڑ سی، ایک چیخ سی پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چنگاڑ کے لیے، چیخ کے لیے. روٹ اس کا یہی ہے، سواد یا اور ہا. اگر آپ اس طرح سے یاد کر لیں گی نا، تو جیسے آپ اس لفظ کی تہ تک جب پہنچتی ہیں تو چیز زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہے، اور وہ چیز دیر تک جو ہے وہ یاد رہتی ہے. تو اس طرح سہ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے آواز بلند کرنے کے لیے. اچھا، لکڑی کے پھٹنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کپڑے کے پھٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کپڑے کو آپ کینچی سے کاٹنے کی بجائے اگر آپ اس کو دو اس کے سائڈ لے کر اس کو یوں پھاڑنا شروع کریں تو کیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے چیخو پکار کے لیے، نوحا خانی کے لیے، چنگاڑ کے لیے، چیخنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہے خاص انفا، خسفنا، اسی آیت میں ہے، آیت نمبر 40 میں. اور یہ جو خسفنا ہے یہ بھی عذاب کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دھنسا دینا. اس میں آپ دیکھیں کہ عذاب کے لیے یہ آپ نے حاسب لفظ پڑھا، سہا پڑھا، آپ نے پیچھے رجفا پڑھا، رجز پڑھا، اور اب آپ یہاں پہ خسفا پڑھ رہی ہیں. خسفا جیسے چاند جو ہے اس کا، اس کو گہن جب لگتا ہے اس وقت بھی یہ استعمال ہوتا ہے، خسف القمر. چاند کو جب گہن لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے، اور اب وہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے اندھیرے میں ہے. تو آنکھ کی روشنی کسی کی چلی جائے یا آنکھ جاتی رہے تو بھی کہتے ہیں خسف العین، خسف القمر. کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ خسفا ہو گیا، تو مانیے اس نے ذلت اور ناگواری کی بات کو قبول کر لیا. اسی طرح اب زمین کے اوپر کوئی چل رہا ہے، خسف فی الارض، تو زمین میں جب اس کو دھنسا دیا جائے، زمین کے اندر وہ چلا جائے، گڑ جائے، تو بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، خسفا میں دو باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر ایک ڈبونا کسی کو، نمبر دو ذلت اور ناگواری. ڈبونا اور ذلت اور ناگواری. پھر ہے آیت نمبر 41-41، اس میں لفظ ہے اولیاء، اس کا واحد کیا ہے؟ ولی. ولی، شاباش، یہی اس کا مادہ بھی ہے، اور اولیاء اس کی جمع ہے. اور العنکبوت، یہ کہتے ہیں مکڑی کو، اور اس کی جمع ہے عناقب، عناقب. قرآن میں آپ دیکھیں تو نحل لفظ استعمال ہوا ہے. نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. نمل کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو. عام جو مکھی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھا تھا آپ نے، ذباب، ہے نا. تو جو عام مکھی ہوتی ہے اس کے لیے ذباب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مکڑی ہوتی ہے جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مکڑی کو؟ اسپائڈر کہتے ہیں. اور اب تو یہ فیک اور فکشن جو ہیرو ہیں، فیک ہیرو اسپائڈر مین. اب آپ دیکھیں قرآن کی کتنی اپوزٹ بات ہے نا، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے، اور جو فیک دنیا ہے اس میں جو ہے وہ اسپائڈر مین، سپر مین کر کے اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تو عنکبوت اس کا روٹ ہے عین کاف با، جالا تننے والی، اور اسی سے اپنا گھر بنانے والی. اس کی جمع عناقب بھی آتی ہے، عناقیب بھی آتی ہے. مذکر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عنکب، عنکب، تو اس کی جمع عناقب آتی ہے. پھر ہے، پھر آ گیا بیت، اور پھر ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ اتخذت آ گیا، اتخذت بیتا، ٹھیک ہے نا، تا طویلا ہے جو مؤنث کی علامت ہے. پھر ہے اوہنا، شاباش، واہنون، واہنون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمزور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. आजी, सुस्ती, कमजोरी। आपने याद होगा, आपने गजवाए उहद पे जब तबसरा पढ़ रही थी सूरत आल इमरान में, आपने तब पढ़ा था कि वहां आपने इसको पढ़ा होगा। और वैसे आपने सहाबा से कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम पे वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा वहन क्या होता है, तो आपने कहा हुब्बु दुनिया व कराहतुल मौत। हाँ, शाबाश, वहां पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो वहन जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कमजोरी के लिए। सूरत मरियम है और इसमें है, ये इब्तदाई आयती है जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ करते हैं। तो क्या कहते हैं कि रब्बे इन्नी वाहन अल अज़्मु मिन्नी, के मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। मानी क्या है कि वहां पे वहन का लफ्ज जो है वो कमजोरी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं। और आप देखें तो यहां पर अवहना का लफ्ज जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन चूंकि यहां पे इसके अंदर फेले इल्लत, इसके अंदर हरफे इल्लत पाया जाता है ना, बीमारी, बीमार लफ्जों में से तीन लफ्ज बीमार कहलाते हैं ना, जो आ जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनकी हालत तब्दील हो जाती है, वो कौन से लफ्ज हैं? शाबाश। तो अलिफ, वो और या, तो इसलिए यहाँ पर आपको वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट वो आराब आपको नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि वह इन औहनल बुयूती, तो बैत वाहिद है और बुयूत इसकी जमा है, और औहन का लफ्ज जो है ये कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। और वो है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 139, नोट कर लें, क्योंकि एक लफ्ज जब पढ़े उसकी फैमिली के दूसरे लफ्ज कुरान से आप ढूंढे ना, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, चीज फिर पक्की याद हो जाती है। तो सूरत आल इमरान आयत 139 में भी आपने पढ़ा था, वला तहिनू ला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर हो तुम मोमिन। तो मैंने आपको बताया था सुस्ती, कमजोरी, इसी तरह हड्डियों का घुलना, तो वो भी इंसान जो है कमजोर होता है ना जब हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं, पहले तो मजबूती होती है। और इसके बाद आप आ जाइए आयत नंबर 42 पे, और आयत नंबर 42 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल अजीज अल हकीम। अजीज जो है इसके माने क्या होते हैं? गालिब, तो ये तो आपने अच्छा याद किया है, लेकिन इसका रूट बताइए, इसके माने बताइए। हाँ, इसका रूट है ऐन ज़ा ज़ा, और इसका जो है लोग नाम भी रखते हैं, ऐन ज़ा ज़ा नाम भी रखते हैं। और तो इसके मानी है कि आम तौर पे ये लफ्ज जब अहले अरब इस्तेमाल करते थे तो इसके मानी है जैसे किसी की इज्जत हो, उसका एक मकाम हो, उसके लिए भी इस्तेमाल करते। सख्त जमीन को भी वो कहते थे अर्दुन अजाजुन, इसका मतलब क्या है? मजबूत जमीन है ना। इसी तरह तअज्जज लहम, गोश्त सख्त हो गया, गुथ गया, तब भी ये इस्तेमाल करते थे। तो ऐसी हालत को कहते हैं इज्जत, ऐसी हालत को कहते हैं जो इंसान को मغلوب होने से महफूज रखे, जो गालिब हो मغلوب ना हो, ऐसी हालत को कहते हैं। फलां फलां पर गालिब आ गया। अरबों में आपको ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अरबी मुहावरा याद करना चाहते हैं आप लोग? आप नोट कर लें इसको अलग करके, मन अज्जा बज्जा, बड़ा मजे का है वैसे, मन अज्जा बज्जा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरबों के एक बुत का नाम भी था, वो क्या था? उज्जा। माशाल्लाह, वेरी गुड। अफारई तो मुल्ला तवल उज्जा, तो ये है लफ्ज। अच्छा, दूसरा लफ्ज है अल हकीम, हा काफ मीम, इसके माने क्या है? ये तो आप मुझे हर दफा बता देती है। एक और बात भी बताई थी आपको, वो ठीक है कि ये भी बात सही है आपकी, शाबाश, आपने एक और पॉइंट दिया कि कुरान में जब हिकमत का लफ्ज आता है नबियों के लिए तो ज्यादातर इसके हिकमत के मानी जो हैं वो सुन्नत के किए गए हैं, कि नबियों को अल्लाह ताला ने जो दनाई दी है, नबुवत है, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप मुझे इसका एक और मानी भी मैंने बताया था पहले भी, आप मुझे वो बताएं कि वो क्या है। एक तो ये है ही जो आप बता रही हैं, एक तो ये है ही, दूसरा हा कैफ मीम, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जानवर को लगाम देना, तभी आपने मुझे इस तरफ ऐसे ही प्यार से और अच्छे से देखा था। तो हा काफ मीम के मानी होते हैं किसी चीज की इस्लाह के लिए उसको रोक देना, जानवर को लगाम देने के लिए भी आता है कि हकम तो दाबा, मैंने जानवर को रोका यानी मैंने उसे लगाम दे दी। तो इसके फिर मानी क्या बनते हैं, हा काफ मीम के असल मानी है किसी चीज की इस्लाह के लिए उसे रोक देना, किसी चीज के मुतालिक फैसला करने का नाम भी फिर हुक्म आता है। हुकूमत कौन करता है, जो फिर कंट्रोल करता है, हुकूमत वही करता है जो कंट्रोल करता है। तो ये लफ्ज जो है ये हाकिम, माहिर हाकिम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह जिसके अंदर हिकमत होती है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, दनाई के लिए भी आता है, वलकद आतैना लुकमान अलहिकमता। तो इस तरह ये लफ्ज जो है ये बड़े वसी मानों में इस्तेमाल होता है। हकीम, मोहकम, तो एक तो इससे मुराद है हिकमत और दूसरे इसके मानी है किसी चीज का मजबूत होना, मोहकम होना, हिकमत और फिर मोहकम होना, मजबूत होना। कुरान में जब ये आता है कि वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तो दानाई की बातें, हिकमत की बातें, मजबूत बातें, सारे मानी इसमें जो है वो पाए जाते हैं। तिलका आया है, तिलका का ऑपोजिट आपको आता है, ये क्या है, जालिका, ये क्या चीज है, ये इसम इशारा है। तो पहले आप हाजे ही को भी इसम इशारा कह रहे थे, हाँ हाजा हाजे ही करीब के लिए आता है और जालिका और तिलका बैद के लिए आता है। तो तिलका किसके लिए आता है, शाबाश, मोनस के लिए आता है, और जालिका मुजक्कर के लिए। इसका मतलब है अल अम सालू जो है ये मुजक्कर है, मुअन्नस है, माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, मिसल वाहिद है और अमसाल उसकी जमा है। फिर है आयत नंबर 43 और इसमें लफ्ज है अल आलिमून, अल आलिम वाहिद है, अल आलिमून जमा है, अल आलिम वाहिद है, अल आलिमून जमा है और इल्म से है। और आखिरी आयत 44 सूरत अल अंकबूत की, माशाल्लाह आप सबको आती ही है। और इसमें कितने जमा इस्तेमाल हुए इस आयत में आप बता सकते हैं, असमावात और आयात और मोमिनीन, और अगर मैं कहूं कि चौथा भी है अर्द, क्यों, वो इस्म जेंस है। जजाकल्लाह खैर।